प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय अग्रवाल और आज 27 जुलाई 2016 के इस afeis.com में आप सभी का हार्दिक रूप से मैं स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं इमरान अहमद, आप अमरोहा उत्तर प्रदेश से हैं। आदित्य शंकर पांडे, आप रुद्रपुर देवरिया से हैं। अंकित चौबे, आपके स्थान का नाम नहीं लिखा हुआ है मेरे पास जो लिस्ट आई है, माफी चाहूंगा। और अवधेश कुमार हैं मंगरा बिहार से। तो इमरान, आदित्य, अंकित और अवधेश, आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, अब मैं आप सबकी ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी बधाई देता हूं विपुल श्रीवास्तव को, जो बीएचयू के स्टूडेंट है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। उन्होंने मेल के द्वारा सूचित किया है कि UPSSC के का जो लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा जो होती है उसमें उनका तकनीकी सहायक के पद पर चयन हो गया है और इसके लिए उन्होंने डेली ऑडियो गाइडेंस के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। तो विपुल, इसके लिए हम सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई और भविष्य के बहुत अच्छी सफलताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। मित्रों, अब हम आते हैं हमेशा की तरह ही लाइफ मैनेजमेंट पर और इस लाइफ मैनेजमेंट पर हम लोग एक बड़े बड़े जोरदार और जानदार और बड़े सच पूछे तो रोचक ही मैं कहूंगा, जब भी फिल्मों की बात आती है तो चीजें रोचक हो ही जाती हैं, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। आज मैं समझता हूं कि आखिरी दिन होगा जब मैं सुल्तान फिल्म के बारे में आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। और मित्रों, कल तक मैंने इमोशनल एनर्जी और उसको किस तरीके से आप स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और किस तरीके से फिर ये इमोशनल एनर्जी आपको लगातार श्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित करती रहती है, आपको हार नहीं मानने देती, उन सबके रहस्य के बारे में मैंने आपसे बातें की थी। और मैंने बताया था कि इनफैक्ट जो हमारी रिलेशनशिप है उसके केंद्र में क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, इन सब के बारे में मैंने विस्तार से बताया था। अब मैं थोड़ी सी दूसरे उसके पक्ष की चर्चा करूंगा। और मित्रों, ये जो चर्चा मैं करने जा रहा हूं ये अपॉर्चुनिटी को लेकर है, अवसर को लेकर के है। मैं देखता हूं मेरे पास बहुत से मेल भी आते हैं, जब स्टूडेंट मिलते भी हैं तो 99% स्टूडेंट की शिकायत यही मुझे मिलती है कि उन्हें अवसर नहीं मिल रहा है और यदि उन्हें अवसर मिले तो वो पता नहीं क्या से क्या कर बैठेंगे। जब उनसे पूछे कि भाई आप अवसर किस तरह का अवसर चाहते हैं तो फिर वही कि कोई बड़ी कोचिंग मिल जाए, बड़ा इंस्टीट्यूट मिल जाए और बड़ी जगह मिल जाए, बड़ी नौकरी मिल जाए, बड़ा काम मिल जाए, बड़ा अच्छा गाइडेंस मिल जाए, बड़े गुरु मिल जाए, पता नहीं बड़ी जगह मिल जाए रहने के लिए और बड़ा मकान मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, पता नहीं क्या क्या चीजें वो कहते हैं। उसमें सब कुछ में बड़ा होता है, मतलब उनको लगता है कि कोई बड़ी चीज मिल जाए तो फिर हम करके दिखा देंगे कोई बड़ा काम। मुझे कभी कभी ये लगता है तो कि जब आपको कोई बड़ी चीज मिल जाए और आप बड़ा काम करके दिखा रहे हैं तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं आप? बड़ी चीज मिलने के बाद तो फिर आप बड़ा काम ही करेंगे। अगर आपको ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया जाए तो आप ट्रक ही चलाएंगे और आप कह सकते हैं कि मैं बड़ी गाड़ी चला रहा हूं। सवाल यह है कि आप उस ट्रक की ड्राइविंग सीट तक पहुंचे कैसे? मित्रों, मैं ये मानकर चलता हूं और मुझे मालूम है कि आप में से शायद ही कोई मेरी इस बात को स्वीकार करेगा कि जीवन में अवसर सबको मिलते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसे जीवन में अवसर न मिला हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपकी आंखों में इतनी रोशनी है कि आप उन अवसरों को पहचान सकते हैं? और यदि आप पहचान भी लेते हैं तो क्या आपके आपके पंजों में, आपकी हथेलियों में इतनी ताकत है कि आप उसे पकड़ सकते हैं? और यदि आप पकड़ लेते हैं तो फिर क्या आपके भुजाओं में इतनी ताकत है कि आप उसे रोक कर रख सकते हैं? और इनमें से कहीं भी आप चूके कि अवसर से चूक गए, अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि कहा भी जाता है दोस्तों कि जो अवसर होता है उसके उसका जो सिर होता है सामने से गंजा होता है। अगर आप सामने से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपके पकड़ में नहीं आएंगे, थोड़े से बाल उसके पीछे होते हैं। अगर आपने पीछे से उसे दबोच लिया तो फिर अवसर आपका बन जाएगा। ये बात सामान्य तौर पर कही जाती है, जो सही पूछे तो 100% सही भी है। मित्रों, कल मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कोमल नाहटा का, जो फिल्म जगत के लोगों को लेकर के वो एक दो पर्सनालिटी को सप्ताह में एक आध दिन उनका साक्षात्कार लेते हैं, तो उसमें आशुतोष राणा आए हुए थे जो मध्य प्रदेश के ही एक्टर हैं, आप सब नाम जानते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे वो उदाहरण बहुत अच्छा लगा और मैं उन्हीं के दिए गए उदाहरण को यहां दोहरा रहा हूं, जो कहीं न कहीं मेरी बात से शायद मैच करता हुआ आपको दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि देखिए, कोई बड़ा काम करने का मौका नहीं मिलता है, हम लोग तो बस छोटे छोटे काम ही करते रहते हैं और उसी में से कोई काम बड़ा हो जाता है, बड़ा बन जाता है, और व्यक्ति को यही करना चाहिए। उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कोमल नाहटा से वो बात कर रहे थे कि कोमल नाहटा जी, मान लीजिए कि मैं अभी आपके पास साथ बैठा हुआ हूं और हम लोगों का प्रोग्राम खत्म हो जाए और हम लोग दोनों वापस चलने को तैयार हो जाए और आप मुझे 800 जो कार होती है ना, जो आपके मारुति की जो कार होती है 800, जो सबसे सस्ती कार है, वो मुझे चलाने के लिए दे दे और कहें कि तुम ड्राइव करो। अब मैं बड़ा मन मार करके उस ड्राइविंग सीट पर बैठ जाऊं और मैं कहूं कि यार मेरे पास तो मर्सिडीज कार है 2.5 करोड़ रुपए की, और एक कहां मुझे जो है ना 2.5 लाख रुपए की कार की सीट पर बैठा करके कह रहे हैं कि इसे चलाओ, और मैं फिर उसे बड़े बेहोदगी तरीके से चलाने लगूं, मन मारकर चलाने लगूं, तो बट नेचुरली कि मैं उस कार को बहुत अच्छे तरीके से नहीं चला पाऊंगा। अब मान लीजिए कि फ्यूचर में कभी आपके पास भी मर्सिडीज हो गई, आ गई, और कभी फिर इसी तरह का मौका आया, तो अब आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आप मेरे बारे में यही सोचेंगे कि इस आदमी को उस समय जब मैंने 800 चलाने को दी थी तो इसको तो 800 ही चलानी नहीं आ रही थी, तो जिसको 800 ही चलानी नहीं आती अब उसको मैं मर्सिडीज चलाने के लिए क्या दूं? तो आप मुझे मर्सिडीज चलाने के लिए नहीं देंगे। इसका मतलब हुआ कि जो 800 कार जब मुझे ड्राइविंग के लिए दी जा रही थी, चूंकि उसके साथ मैंने न्याय नहीं किया, वहां अपने काम को अच्छी तरीके से अंजाम नहीं दिया, तो अब ये जो बड़ा मौका मुझे मिलता उसको मैंने हमेशा के लिए खो दिया। तो उन्होंने कहा, बड़ी खूबसूरत बात कही, देखिए जीवन जिंदगी का सिद्धांत ही यही होता है कि जो भी आपको मौका मिला है उसको आप मैक्सिमम अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कीजिए, डू योर बेस्ट। तो मित्रों, यही अवसर होते हैं, इसी को अवसर कहा जाता है। आपको लगता है कि जैसे अवसर किसी अलग तरह की पैकेजिंग में कोई लेकर के आपके पास आएगा और जैसे फ्लिपकार्ट और amazon.com वाले आपके घर का पर कुरियर के थ्रू कोई सामान भिजवा देते हैं, वो आपको सामान देता है, दस्तखत करा करके चला जाता है और फिर आप उसे खोलते हैं, इसी तरह से अवसर कभी कोई कुरियर वाला आएगा और आपको दे के चला जाएगा। ज्यादातर लोगों के दिमाग में कुछ इसी तरह का मुझे लगता है कि शायद इमेज अवसर की बनी हुई है। वो तो फ्लो कर रहे हैं लगातार, हवाओं में अवसर है, जमीन में अवसर है, आकाश में अवसर है, हर जगह अवसर ही अवसर तो हैं। पहले आप तो चुस्त दुरुस्त रहिए, खुद चुस्त दुरुस्त है नहीं और सोचते हैं कि अवसर चुस्त दुरुस्त होकर के हमारे सामने आ जाए। मित्रों, जीवन का हर पल एक अवसर के रूप में है। जहां आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो आपके लिए अवसर है। अगर आप इस डेली ऑडियो गाइडेंस को सुन रहे हैं तो ये आपके लिए अवसर है। अगर आप यहां 15 डेज क्लासेस के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए अवसर है। आप जहां रहकर जिस तरीके से की भी तैयारी कर रहे हैं वो एक अवसर है। चाहे आप छोटी मोटी ही नौकरी क्यों ना कर रहे हो, हालांकि मैं उसके लिए छोटी मोटी इस्तेमाल शब्द करता नहीं हूं, लेकिन मैं कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, कर रहे हैं तो वो एक अवसर है। अगर आप फोकट में किसी का काम कर रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, वह एक अवसर है। मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें अवसर छिपा हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि हमारे दिमाग में कर्तव्य बोध नहीं है, हमारे दिमाग में अधिकार बोध है। ये फ्यूडलिस्टिक माइंड होता है, वो जबरदस्त रूप से है, अधिकार बोध जबरदस्त रूप से भरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि अवसर पर भी हमारा अधिकार है, हमें अवसर मिलना चाहिए, यह हमारा अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है आपको, अवसर की समानता दी हुई है, अब वो क्या करें, कैसे एक आदमी को उनकी जगह पर पहुंचाए, अवसरों को पहुंचाए। क्या अवसर कोई मूर्ति के रूप में है, कोई सामान के रूप में है कि एक एक को जाकर के उसका बंटवारा कर दिया जाए, कैसे दे? आपको आपको कहां कोई रोक रहा है सिवाय एक ही आदमी के, जो आप खुद हैं। तो जहां अधिकार बोध होता है, नहीं मुझे तो मर्सिडीज में तो चलाने वाला हूं, और मैं तो ये मैं 800 क्यों चलाऊं, तो मर्सिडीज चलाना मेरा अधिकार है, और 800 चलाने के लिए कहना मेरा अपमान है, खत्म हो गई बात। और हमारे यहां कहा गया, न जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। तो ये भगवान और ये वेश क्या है? वेश का मतलब अपॉर्चुनिटी है, कि पता नहीं वो किस वेश में आपके पास आ जाएगा, किस रूप में आ जाएगा, आप नहीं जानते। दोस्तों, आप केवल अभी जो मैंने बात कही है, इस सिद्धांत को फिल्म सुल्तान पर अप्लाई करके देखिए, तब फिर आपको सुल्तान की कहानी समझ में आ जाएगी, सुल्तान की सफलता समझ में आ जाएगी, और सुल्तान की आपको उपलब्धियां समझ में आ जाएंगी। आप देख रहे हैं कि सुल्तान एक गांव में रह रहा है, बस वो अपना एक अच्छा पहलवान है, और मस्ती से वो तो पतंग तोड़ने में, पतंग टूट कटी हुई पतंगों को पहले पकड़ने के चक्करों में दौड़ लगाता है, फालतू का काम कर रहा है, और इतनी मेहनत करने के बाद वो पकड़ भी रहा है तो किसको रहा है, कटी हुई पतंग को, और उसके लिए वो कितनी मेहनत कर रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कटी हुई पतंग की दौड़ लगाना ही बाद में रेसलिंग के लिए उसके जीवन का एक अवसर बन गया, उसके लिए वरदान बन गया, उसी को उसने इतनी बड़ी चीज में कन्वर्ट कर दिया, और इसको अवसर मिला कैसे? अब थोड़ा सा आप फिल्म को याद करने की कोशिश कीजिए, आपको अवसरों की से भेंट होने का जो सूत्र है वो समझ में आ जाएगा। कभी किसी ने उसको पहलवानी करते हुए देख लिया होगा और उसकी स्मृति में है, यानी कि उस पहलवानी को उस सुल्तान ने इतने अच्छे तरीके से अंजाम दिया था कि जो व्यक्ति देख रहा था वह भूल नहीं सका। पहलवानी तो वहां बहुत लोगों ने की थी, यही याद क्यों रहा? क्योंकि इसकी बात कुछ और थी। तो ये जो बात कुछ और थी, ये कहां से आएगी? ये बात कुछ और थी केवल वहां से आती है मित्रों, कि जब आप अपने काम को एक बेहतरीन अंजाम देने के लिए कोई भी कसर उठा नहीं रखते। दोस्तों, इसको समझने की कोशिश कीजिए, और जब एक बार आपके अंदर ये क्षमता आ जाती है, क्षमता क्या, मैं तो कहूंगा कि एक चरित्र आपका ऐसा बन जाता है कि मैं जो काम करूंगा बहुत बेहतर तरीके से करूंगा, अच्छे तरीके से करूंगा, तो आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी का एक विचित्र किस्म का घेरा तैयार हो जाता है, और जो भी आपके संपर्क में आता है आपसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। और यही तो होता है, फिल्म की शुरुआत थोड़ी सी देर के बाद ही आप देखते हैं कि वो अपने दफ्तर में गया हुआ है, पैसे वैसे मांगता रहता है, और ये जिसे रेसलर बनाना है, जो एक जो व्यक्ति है वो ढूंढता हुआ उसको गांव में पहुंचता और ऑफिस में देखता है तो यार ये क्या लड़ेगा यार। लेकिन इतने में एक ट्रैक्टर आकर के रुकता है, याद करने की कोशिश कीजिए, और वो ट्रैक्टर एक गड्ढे में उनके ऑफिस के कैंपस में ही फंस जाता है। अब ये होता है, भैया अब ये ट्रैक्टर निकलेगा कैसे? लोग कहते हैं कि सुल्तान को बुलाओ, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये निकल जाएगा। और सुल्तान आता है और कंधे से करके उस ट्रैक्टर को निकाल देता है, जिसे वो देखता रहता है, जो उससे बात करने के लिए आया था, और बस ये देखना था कि उसकी पूरी सोच सुल्तान के प्रति बदल जाती है, और किसी भी कीमत पर वह सुल्तान को पाना चाहता है। अब आप देखिए, अब सुल्तान अवसर के पीछे नहीं है, उसने एक छोटा सा मौका मिला था, उसका इस्तेमाल किया, और अब जो लेने आया है सुल्तान को, किसी भी स्थिति में उसको पाने की कोशिश कर रहा है कि बस सुल्तान एक बार हां कर दे। तो दोस्तों, आपको ही केवल अवसर की तलाश नहीं होती, अवसरों को भी सुपात्र की तलाश होती है, कि मुझे कोई तो कन्वर्ट करे बड़ी चीज में, वो भी प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये दो तरफा होता है, ये मामला दो तरफा है दोस्तों, एक तरफा नहीं है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर आप देखेंगे कि हर समय आपके पास अवसरों का जमघट लगा रहेगा, और आप उस समय यही कहेंगे कि किसको मैं चुनूं, किस किस को प्यार करूं, ये आप कहेंगे, इनमें से किसे मैं चाहूं, किसे मैं अपना बना लूं, प्रॉब्लम ऑफ च्वाइस खड़ी हो जाएगी। लेकिन उसके लायक हम अपने आप को बनाएं तो सही। तो मित्रों, ये अगला पॉइंट जो मुझे सुल्तान में दिखाई दे रहा था वो यह था जिसकी चर्चा मैंने अभी आप लोगों के साथ की है दोस्तों। तो बस कुल मिलाकर के इस अंतिम वाक्य के साथ मैं इस प्रसंग को समाप्त करूंगा। मित्रों, अवसरों को पकड़ने की एक कला चाहिए और वो कलाकार बनिए, अवसरों का खजाना आपके पास मौजूद रहेगा। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कल के IR न्यूज पर। दोस्तों, कल के IR न्यूज में दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहली तो खबर थी बाल श्रम निषेध तथा नियमन विधेयक को लेकर। अगर आपको आप लोगों को ध्यान हो और DD न्यूज आप लोग वाकई में सुन रहे हो तो लगभग 8-10 दिन पहले या एक सप्ताह पहले हुआ होगा कि इस टॉपिक पर दूरदर्शन ने एक डिबेट अपने न्यूज वाले पार्ट में ही डिबेट कराया था कि जो बाल श्रम विधेयक जो आने वाला है उसकी क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं, इस तरह की डिबेट एक थी। तो मित्रों, अब वो पारित, वो जो विधेयक है वो हो गया है। ये जो बाल श्रम विधेयक पारित हुआ है, मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिविल सर्विस के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मित्रों, अगर आप अपने जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर को देखेंगे तो उसमें बकायदे जो सेकेंड पेपर का आपका नाम है उस नाम में उसमें 5 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिसमें एक स्पेशली मेंशन किया हुआ है सोशल जस्टिस, और बट नेचुरली कि ये जो बाल श्रम है ये सोशल जस्टिस का हिस्सा है। देखिए, बाल श्रम विधेयक इससे पहले भी पारित हो चुका है, मतलब ये बिल्कुल नया नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इससे पहले भी इस पर कानून बन चुके हैं और उनकी जानकारी आपको होगी। अब यूं कह लीजिए कि उसमें कुछ संशोधन किया गया है, कुछ परिवर्तन किया गया है। तो अब आप जब सिविल सर्विस की तैयारी इस टॉपिक पर करेंगे तो आपको ये देखना है कि पहले का जो विधेयक था उससे यह किस मायने में अलग है। हालांकि देखिए, आप बाल श्रम जैसा जो मामला है आप देखेंगे कि वो राज्य सूची में है और खासकर ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है अगर हम एक कोर कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में बात करें तो, लेकिन केंद्र ने उसे पारित किया है। तो आपको देखना होगा कि पहले की तुलना में पहले जो प्रोविजंस किए गए हैं उससे ये किन मायनों में अलग है, मतलब पहले वाले क्यों इतने इनसफिशियंट लगा कि नया विधेयक लाना पड़ा, और फिर जब ये नया विधेयक आ गया है तो ये किस तरीके से जो बाल श्रमिक हैं उन समस्याओं का मुकाबला कर सकेगा, जो इनसे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकेगा। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि पिछले 2-3 साल से खासकर बाल श्रमिकों के मामले को लेकर के समाज में काफी हलचल सी है, इन मामलों में भी लेकर के कि जो एज कम है लेकिन वो जघन्य अपराधों में शामिल हो रहे हैं, जिससे फिर किशोर की परिभाषा बदलने की बात उठी, जो निर्भया कांड वगैरह जैसे जो कांड हुए थे वहां फिर बच्चों की बात आई, बाल बच्चों की जो ट्रैफिकिंग हो रही है मतलब जो तस्करी हो रही है उनको लेकर के बातें चलने लगी, स्ट्रीट चिल्ड्रेन जिसे हम कहते हैं अनाथ बच्चे उनकी बातें तो होती ही हैं, मतलब बाकायदे गिरोह सामने आए हैं जो बच्चों को बेचते हैं, उनका अपहरण करा करके और पता नहीं क्या क्या, मतलब दंग रह जाते हैं देख करके कि आदमी की आपराधिक वृत्ति कहां तक अमानवीय हो सकती है। ये सारी चीजें बच्चों के साथ जुड़ी हुई है, और आपको मालूम है कि 2 साल पहले ही हमारे यहाँ के ही एक व्यक्ति को नोबल प्राइज दिया गया जो बाल के क्षेत्र में ही, बाल अधिकार के क्षेत्र में ही काम कर रहे थे, उनका अपना NGO है। तो मित्रों, इस संदर्भ में मुझे लगता है कि ये जो बाल श्रम विधेयक है ये बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक पारित हुआ है। अभी अखबारों में इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं आया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद कुछ चीजें सामने आएंगी। आपको इस पर ध्यान देना है, मैं जो चीजें आएंगी वो आपको प्रोवाइड करता ही रहूंगा। न्यूज में जो थोड़ी सी जो बातें बताई गई थी वो आपको ध्यान होगा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अब काम नहीं कर सकेंगे, किसी भी तरह का काम नहीं कर सकेंगे। पहले थोड़ा सा ये था कि जो हेजार्डियस हैं, जो थोड़े से खतरे वाले काम हैं, उनमें उनको नहीं लगाया जा सकता, अब उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे कोई किसी भी काम में नहीं लगाए जा सकते। हाँ, वो अपना अगर कोई पारिवारिक उनका काम चल रहा है, पुश्तैनी काम चल रहा है, घर में ही जैसे है परिवार में है तो उसमें वो मदद कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह भी प्रोविजन कर दिया गया है कि जो उनके काम करने का समय होगा वो स्कूल समय के बाद होगा। मतलब जो स्कूल जाने का पीरियड समय है उसमें वो स्कूल ही जाएं। और डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि ये प्रोविजन इसलिए किया गया है दोस्तों कि अब शिक्षा का अधिकार भी अब आपको मिल चुका है, है ना, जिसमें 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो बट नेचुरल कि उस समय उन्हें वो परिवार वाले भी ये सोचें कि नहीं अभी बच्चे के पढ़ने का वक्त है तो उसे स्कूल जाना चाहिए। तो मित्रों इस तरह से कुछ प्रोविजंस अभी न्यूज में बताए भी गए हैं, डेफिनेटली इस पर अभी चीजें आएंगी तब फिर हम इस पर और बात करेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक है सिविल सर्विस के लिहाज से भी और स्टेट सिविल सर्विस वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं उस लिहाज से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मित्रों जो दूसरी खबर थी वो उर्मिला इरोम जी को लेकर के थी, इनका नाम काफी चर्चित है और आप लोग जो भी थोड़े से लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे इस नाम से परिचित होंगे। वो मणिपुर की हैं, एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और पिछले 16 साल से वो एक तरीके से भूख हड़ताल पर ही कह लीजिए कि बैठी हुई अनशन पर बैठी हुई हैं और जो आर्म एक्ट मणिपुर में जो लागू है वो उसको खत्म करने की मांग कर रही हैं। दोस्तों ये वही आर्म एक्ट है जिसको लेकर के अभी लगभग 10 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पर ये टिप्पणी की थी कि भाई अगर वो आपके अपने देश का हिस्सा है और वहां उसे कब तक आप आर्मी एक्ट के तहत रखेंगे, उसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालिए, ये कैसी डेमोक्रेसी है जहां की जनता को आर्मी के संगीनों के नीचे रहना पड़ रहा है। तो इस तरह के भावार्थ वाली टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की थी और अब उर्मिला इरोम ने जो एक बहुत बहुत अच्छा जो कदम उठाया है जिसकी मैं समझता हूं कि हर कोई तारीफ करेगा, सरकार ने तो वेलकम किया ये कि उन्होंने कहा है कि अब वो अपना इस अनशन को समाप्त कर रही हैं और करने जा रही हैं और अनशन को समाप्त करने के बाद नेक्स्ट ईयर जो मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें वो भाग लेंगी और अभी उन्होंने यही घोषणा की है कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़ी होंगी। यानी कि ये कह लीजिए कि एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते अब वह इस तरीके का विरोध करने की बजाय अब पॉलिटिकल मेजरमेंट के तहत मेजर्स के तहत यानी कि एक राजनीतिक उपाय के तहत अब वो मणिपुर की समस्याओं का समाधान ढूंढेंगी। और सच पूछे मित्रों तो यही डेमोक्रेसी भी है। आपने देखा कि हमारे गृह राज्य मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया इसी रूप में उनका स्वागत किया है कि अब वो राजनीति की मुख्य धारा में आना चाह रही हैं, उनका स्वागत है और डेफिनेटली जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है वो होता ही यही है दोस्तों कि कितनी भी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो कितनी भी जटिल क्यों न हो लेकिन वो बातचीत के द्वारा सुलझाई जा सकती है। तो उन्होंने ये रास्ता चुना है तो इसमें आपको एक डेमोक्रेसी की ताकत भी दिखाई दे रही है, डेमोक्रेसी की प्रोसेस भी दिखाई दे रही है और हो सकता है कि यह मणिपुर में जो अभी आर्म्स एक्ट चल रहा है उसके समाधान की दिशा में कारगर भी सिद्ध हो। देखते हैं कि वो क्या होगा लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो आर्म्स एक्ट है मणिपुर का वो उस पर क्वेश्चन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उस पर आपको ध्यान देना होगा। मित्रों मैं न्यूज से इतना ही, अब मैं आता हूं न्यूज पेपर पर। मित्रों आज न्यूज पेपर में एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और न्यूज के रूप में खासकर जो मुझे बड़ी खबर लगती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और वह है दोस्तों कि हेग में जो स्थायी मध्यस्थता न्यायालय है आपको अपने अखबारों में पढ़ा होगा कि उसने हमारी जो अंतरिक्ष की एक एजेंसी है एंट्रिक्स लिमिटेड उसके ऊपर 67.2 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 4400 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाया है। यानी कि इतना पैसा उसे एक दूसरी कंपनी को देना होगा और उस दूसरी कंपनी का नाम है डेवास मल्टी मीडिया। अब आप इसको थोड़ा सा जान लीजिए कि ये मामला क्या था, इसके बाद फिर मैं आगे की चीजों पर आऊंगा। बेसिकली दोस्तों ये जो नाम है एंट्रिक्स लिमिटेड है ना, ये हमारा जो इसरो है ना उसकी एक मार्केटिंग एजेंसी है। मतलब वो चूंकि आपको मालूम है कि भारत ने अब अंतरिक्ष ये उपग्रह वगैरह छोड़ने में अब इतनी प्रोफेशनलिज्म हासिल कर ली है कि वो दुनिया के उपग्रह भी छोड़ने लगी है, आपको मालूम ही है। तो ये मार्केटिंग का काम करती है जिसका नाम है एंट्रिक्स। ये जो डेवोस मल्टीमीडिया है, हिंदी में ये देवास करके आ रहा है, पता नहीं एग्जैक्ट उच्चारण क्या होगा, ये फॉरेन की कंपनी है ना। इस फॉरेन की कंपनी ने क्या है कि यहां भारत में ये कंपनी आई और उसने एक इस एंट्रिक्स से एक समझौता किया था। समझौता इसलिए कहा था, इस कंपनी का जो काम था, डेवोस का काम ये था कि जो भी उपग्रह छोड़े जा रहे हैं उनकी मदद से वो एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश करेगी कि ये जो हमारे मोबाइल फोन वगैरह हैं इसमें हाई स्पीड वाले इंटरनेट चलने लगे। ये उसका काम था, इंटरनेट हमारे हाई स्पीड से चलने लगे, बहुत ही ले तरीके से, आप समझिए बहुत ही आसान तरीके से। तो उसके लिए मित्रों दो उपग्रह भी दे दिए गए थे कि ठीक है हम आपको उपग्रह दे देते हैं, मतलब एंट्रिक्स की जगह आप इसरो कह लीजिए, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने दे दिए थे। और साथ ही साथ इन्होंने उसे इस दो उपग्रहों के लिए एस बैंड स्पेक्ट्रम भी दिया था, एस बैंड स्पेक्ट्रम। अब देखिए टेक्निकल चीजें हैं, ये क्या होता है कैसे होता है ये मुझे भी नहीं मालूम है, आप लोग ज्यादा समझेंगे इस पीछे तो मुझे तुलना में, मेरी तुलना में, लेकिन मैं अगर सिविल सर्विस की तैयारी करता तो या तो समझ लेता, नहीं समझता तो कोई बात नहीं याद कर लेता। एस बैंड स्पेक्ट्रम उनको दे दिया गया था। अब हुआ क्या दोस्तों कि बाद में उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ही हमारे प्रधानमंत्री थे, बाद में हुआ ये कि आपको मालूम है कि 2G स्पेक्ट्रम का मामला उछला है ना, कि उसमें बहुत घोटाला हुआ है और देश को इतना नुकसान हुआ है फलाना फलाना, तो उसमें थोड़ा सा जो मामला था ये एस बैंड स्पेक्ट्रम वाला भी आ गया। उसमें भी मामला ये हो गया कि सरकार ने बहुत कम कीमत पर डेवोस को ये स्पेक्ट्रम दे दिए, मतलब उसमें कैलकुलेशन ये किया गया था कि अभी जिस रेट पर डेवोस कंपनी को स्पेक्ट्रम दिया गया है तो 12 साल में सरकार को 600 करोड़ रुपए के करीब मिलेंगे, जबकि उसको मिलने चाहिए लगभग 5000 करोड़ रुपए, तो यानी 4400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अब जैसे ही ये बात थोड़ी सी उठने लगी तो चूंकि सरकार पहले ही 2G स्पेक्ट्रम मामले में घिरी हुई थी, कुछ नेता जेल भी जा चुके थे, तो सरकार ने फिर एक बचाव के लिए हड़बड़ी में जो भी कह लीजिए घबरा करके इमेज बचाने के लिए या इस विवाद को खत्म करने के लिए आनन फानन में यह सौदा रद्द कर दिया कि हम आपको एस बैंड स्पेक्ट्रम नहीं देंगे। अब आपने रद्द तो कर दिया, अब वो जो कंपनी जो आपके देश में आकर के इतना इन्वेस्ट कर चुकी है अब उसका तो बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अब वो क्या करे। तो दोस्तों इसी के लिए फिर वो कोर्ट गई थी कि हमारा इतना नुकसान हो गया है अब आप इसको देखिए, और कोर्ट ने पूरी सुनवाई करने के बाद अब एंट्रिक्स को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि हर्जाने के रूप में आप उन्हें 4400 करोड़ रुपए दीजिए। ये कुल मिलाकर के ये मामला है। तो ये तो दोस्तों मामला हो गया। अब सवाल ये है कि इसमें सिविल सर्विस का कैसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, उस पर आते हैं। जब तक आप इस बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे तब तक आप किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उनको भी नहीं समझ सकते। मित्रों जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते कि भारत मेक इन इंडिया में लगा हुआ है, हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनवाइट करना चाह रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी चाह रहे हैं, तो अगर विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी मेक करने के लिए या वो निवेश करेंगी और इस तरीके से यदि उनके साथ किए गए सौदे बाद में रद्द किए जाएंगे तो आप सोच करके देखिए कि उनका मोराल क्या होगा, वो क्या भारत आना चाहेंगी। क्योंकि देखिए इनसे सबसे जब सौदे होते हैं तो उस सौदे के बीच में एक बकायदे अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं इस बारे में, उसके तहत ये सारे सौदे किए जाते हैं। तो एक तरीके से न्यायालय ने यही कहा है कि भारत ने वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान नहीं किया है, उसे तोड़ा है। तो अब इससे जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं या जो फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो डेफिनेटली वो मान एक भारत के प्रति फिर उनके मन में अविश्वास का भाव पैदा होगा कि भैया हम अभी संधि कर लें लेकिन ये तो टूट जाएगा, आगे चल करके इसका भरोसा ही नहीं है कि ये कितने दिन चलेगी कितने नहीं, कि फिर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों ये उस पर एक बहुत बड़ा आघात है, भारत की इंटरनेशनल इमेज पर एक बहुत बड़ा इसे आप आघात मान सकते हैं। तो इस पर अब आपको एडिटोरियल कमेंट्स वगैरह पढ़ने को मिलेंगे कि भारत को क्या करना चाहिए, मतलब सोच बहुत सोच समझ करके आप संधियां कीजिए, उसको बहुत अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए, अच्छे से प्लान कीजिए, देखिए, और एक बार अगर आपने संधियां कर ली हैं तो फिर उनका पालन करने में फिर पीछे मत हटिए, क्योंकि उससे फिर दूसरे बहुत बड़े नुकसान हो जाएंगे। तो मित्रों, इस बात को केंद्र में रखकर अब आगे आपको इस इश्यू पर जो भी पढ़ने को मिलेगा आप उस पर ध्यान दीजिएगा। और मैं इसे इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि ये मुझे क्यों इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसलिए इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस इससे पहले आए हैं। अगर मैं 2013 के का में पूछा गया प्रश्न आपको आपके सामने रखूं तो शायद वो बात स्पष्ट हो जाएगी। ये जनरल स्टडीज मेंस का थर्ड पेपर का प्रश्न है ना, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। देखिए, उसमें थर्ड पेपर में 2013 में पूछा गया था, भारतीय एकस्व अधिकार नियम पेटेंट लॉ 1970 की धारा 3D में वर्ष 2005 में बलात् संशोधन करने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए विवेचना कीजिए कि इसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने नारकोटिक्स की ग्लाइवेक के एकस्व अधिकार आवेदन को किस प्रकार अस्वीकार किया। इस तरीके से एक क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, है ना। ये एक विदेशी कंपनी, दवाई बनाने वाली कंपनी थी। अब हालांकि ये बात तीन चार साल पुरानी हो गई है, वो घटना आपको उस तरीके से याद नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ इसी तरह की से जुड़ा हुआ है। और प्री में जो एक मोबाइल कंपनी थी उस पर एक टैक्स लगा दिया गया था, मोबाइल कंपनी थी, अच्छा दवाई की ही कंपनी थी, उस पर सरकार ने पिछली डेट से टैक्स लगा दिया था, उसको भी लेकर के बहुत बवाल मचा था और सरकार को एक तरीके से कह लीजिए उसकी छवि बड़ी खराब हुई थी कि आप अगर पिछले डेट से टैक्स लगाएंगे, वो भी यूपीए गवर्नमेंट के समय में हुआ था, अगर आप पिछले डेट से टैक्स लगाते रहेंगे तो फिर कैसे बिजनेस किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें चूंकि जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल लॉ है, उससे कंडक्ट होती हैं, तो उस लिहाज से ये जो घटना है ये इम्पोर्टेंट घटना है, इस पर आप ध्यान देंगे। मित्रों, इसके अतिरिक्त एक दो और भी डेमोक्रेटिक आपके एडिटोरियल कमेंट है, खासकर टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल कमेंट है, आप उसको जरूर देखिएगा, जो उन्होंने 24 माह के बच्चे को गर्भ से गिराने की अनुमति दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको लेकर के एडिटोरियल कमेंट है, बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट है, उसे पढ़ेंगे। और इसी तरह से दैनिक भास्कर में खासकर सड़क सुरक्षा अधिनियम को पारित करने के बारे में शशि थरूर जी का लेख है, वो भी इम्पोर्टेंट लेख है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा। तो मित्रों, मैं अब आता हूं ईमेल पर। तो सबसे पहले तो ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और इसमें मैं मोदराम देवासी को धन्यवाद दूंगा, विशेष रूप से देना चाहूंगा कि मैंने कल बताया था कि प्रशांत मवानी जो हमारे राजकोट के सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने आप सबके लिए एक संदेश दिया था, आप लोगों को वेलकम किया था, तो मोदराम देवासी ने उस वेलकम के जवाब में प्रशांत को धन्यवाद दिया है। तो प्रशांत मोदराम देवासी के द्वारा दिए गए इस धन्यवाद को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें। और डेफिनेटली मोदराम देवासी ने आपको इसलिए धन्यवाद दिया है कि हमारे पांचवें बैच के स्टूडेंट हैं और अभी 2 महीने बाद ही वो यहां आने वाले हैं। तो मोदराम, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत अच्छी बात सोची। एक मेल है दोस्तों अच्छे लाल चौहान का, यूपी से हैं, उन्होंने लिखा है कि वो डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में लोगों को बताते रहते हैं और उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, उनके जो दोस्त होते हैं जिनको ये बताते हैं वो इससे बड़े खुश भी होते हैं। तो अच्छे लाल, इसके लिए आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। और कुछ और भी नाम है दोस्तों जो है जिन्हें मैं यहां लेना चाहूंगा, राकेश कुमार है बंगलुरु से, पूजा राजपूत प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, सुमित मिश्रा कानपुर उत्तर प्रदेश से, रितेश नायक पिथौरा छत्तीसगढ़ से, नवीन दुबे गोरखपुर से, धनंजय त्रिपाठी लखनऊ से, विनोद राठी रोहतक हरियाणा से, राहुल कुमार दिल्ली से, सोनू कुमार और दीपिका दुबे इलाहाबाद से। तो आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही यह डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं समाप्त होता है, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।